ये आकाशवाणी है। अब आप प्राची प्रिया से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4.5 साल तक चले सैन्य गतिरोध के बाद अब यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत जारी रहेगी और सीमा पर गश्त जल्द ही फिर से शुरू होगी। क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों ने कहा कि सत्यापन का काम चल रहा है और ग्राउंड कमांडरों के बीच गश्त के तौर तरीके तय किए जाएंगे। दोनों पक्ष कल दिवाली के अवसर पर मिठाइयों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की सुविधाओं में सुधार करना है। प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व एकता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एकता की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शपथ ली। विश्व एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। मतदान 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 644 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। उम्मीदवार कल तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। 743 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी के आधारहीन आरोपों का जिस प्रकार दो टूक जवाब दिया है उससे पता चलता है कि कांग्रेस सत्ता के लालच में खुलेआम अनर्गल अभियान चला रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं के बीच बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को नीचे दिखाने और अपमान करने का प्रयास कर रही है। दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर के चारों ओर दिव्यता का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए। उन्होंने रामलला की आरती उतारी और दीप प्रज्वलित किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहला दीपोत्सव समारोह है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज राम की पैड़ी सहित अयोध्या की 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। भारतीय रेलवे ने जम्मू तवी से 2 आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब नवाचार और प्रौद्योगिकी की बात होती है तो भारतीय युवा श्रेष्ठतम युवाओं में गिने जाते हैं। श्री मोदी ने गिटहब के सीईओ थॉमस डोमके के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा किया जिसमें उन्होंने समूचे भूमंडल में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपिंग जनसंख्या की सराहना की है और वैश्विक टेक टाइटन के रूप में देश के निरंतर उत्थान का उल्लेख किया है। देश के बाजार 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 227 अंक की गिरावट के साथ 79,942 अंकों पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।